अच्छा मे बी वो टाइपिंग में कुछ या तो मिस्टेक हो गई। बहरहाल क्लास शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही लजीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून इला अल आखिर سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। इस क्लास के अंदर हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे हैं मार्क कुरान के जिल नंबर 5 से, और शुरू की 6 आयात की ही तफसीर चल रही है। तर्जुमा खुलासा तफसीर वगैरह पढ़ लिया था। मार्फ मसाइल भी तकरीबन इन आयात के मुकम्मल नहीं, अभी तो मुकम्मल नहीं हुए। पेज नंबर 19 पर हम हैं, 19, और इसमें ख्वाब की हकीकत और दर्जा और उसकी किस्में, ये मौजू चल रहा है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब इन्हीं आयात के अंदर मशहूर है कि उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को फरमाया कि या अबती इन्नी रअईतु अहद अशरा कौकबं वश्शम्स वल कमर रअईतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने मुझे रुया हुई है। रुया से यहाँ पर मुराद जो है वो ख्वाब है, ठीक है। तो मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। तो फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे दूसरे उलमा और मशायख जो हैं फिर इस मौके पर ख्वाब की हकीकत के बारे में भी कुछ बयान फरमाते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरीके से बताया कि ख्वाब की जो है वो 3 किस्में होती हैं। एक किस्म तो वो होती है कि जो कुछ सारा दिन इंसान सूरतें देखता रहता है और जो हालात उसके ऊपर गुजरते रहते हैं, तो वही ना ख्वाब में मुतशक्कल होकर यानी एक शक्ल इख्तियार करके ख्वाब में इंसान को नजर आ जाते हैं, यानी दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वही। उस पर आपको कहा था ना कि हमारे आज जैसे फरमाते हैं कि दिन भर दुकान के अंदर और रात को दुकान उसके अंदर, ठीक है। तो जो कुछ चलता है वही ख्वाब में भी आ रहा होता है। और दूसरी शक्ल जो ख्वाब की होती है वो शैतान की तरफ से होती है कि वो कुछ सूरतें और वाकयात वगैरह उसके जहन में डालता है सोने की हालत में, और वो कभी उसको खुश करने के लिए होते हैं और कभी डराने के लिए होते हैं। और शैतान चूंकि है ही इम्पोस्टर है ही, यानी सबसे बड़ा दज्जाल हकीकत में तो शैतान है ना, ठीक है ना, धोखा देने वाला, ट्रिक्स्टर, ठीक है। बाकी जो दज्जाल दुनिया के अंदर आएगा वो तो इंसानी शक्ल के अंदर होगा, लेकिन असल में तो दज्जाल जो है वो शैतान है, ठीक है, जिसका ये आला होगा असल में, ये वाला दज्जाल। तो वो ना बस जो कुछ भी दिखाता है ना वो बनी आदम को नुकसान पहुंचाने के लिए ही दिखाता है, अच्छी चीज भी नुकसान पहुंचाने के लिए और बुरी चीज भी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये दूसरे किस्म का ख्वाब था। और तीसरी किस्म का ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, यानी उसमें दरमियान में शैतान नहीं होता, ठीक है। वरना जो दूसरी किस्म का ख्वाब था वो भी ये नहीं कि अल्लाह के की मर्जी के खिलाफ शैतान कोई काम कर सकता है, हरगिज नहीं, लेकिन दरमियान में जो है ना वो शैतान अल्लाह की मर्जी से ही आ जाता है, वो उस इंसान को गलत बातों जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमने पढ़ लिया था कि सूफिया इकराम वगैरह की जो तहकीक है कि जो आलम इमसाल के अंदर चीजें होती हैं, आलम मिसाल के अंदर जो चीजें होती हैं ना वो उनकी एक शक्ल होती है जो कि ख्वाब के अंदर इंसान को नजर आ रही होती है। जो मटेरियल एटॉमिक कॉम्पोजिशन वाली चीजें होती हैं वो तो वैसे ही उनकी अपनी एक शक्ल होती है, फिजिकल फॉर्म होती है, लेकिन जिन चीजों की फिजिकल फॉर्म नहीं भी होती, ठीक है ना, इस दुनिया में जिन चीजों की फिजिकल फॉर्म नहीं भी होती तो आलम मिसाल में उनकी भी फिजिकल फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे मौत की जो है वो जैसे मेंढा, ठीक है ना, यानी कोई दुम्बा टाइप की कोई चीज, मेंढा जिसको दुम्बे को हम तो उसको दुम्बा ही कहते हैं, तो कयामत के दिन जो है ना वो मेंढे को जबा कर दिया जाएगा, यानी कि मौत खत्म कर दी जाएगी, अब उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी। तो ये एक 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 शक्ल है मौत की, हालांकि मौत की कोई शक्ल नहीं होती इस दुनिया के अंदर। तो उसी तरह से आलम मिसाल के अंदर भी शक्लें होती हैं जो कि नजर आ जाती हैं ख्वाब के अंदर। आगे चलते हैं इस बहस को मजीद पढ़ते हुए कि अंबिया अलैहिम सलाम के सब ख्वाब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, यानी उनके अंदर कोई आमेजश नहीं होती, कोई उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्सअप नहीं होती अंबिया कराम के ख्वाब के अंदर, इसीलिए उनके ख्वाब भी वही का दर्जा रखते हैं, ठीक है। आम मुसलमानों के ख्वाब में हर तरह के इहतमाल रहते हैं, इसलिए वो किसी के लिए हुज्जत और दलील नहीं होते, ठीक है ना। ख्वाब भी जो है वही का दर्जा रखते हैं, लेकिन अंबिया को भी ख्वाब आते हैं, ठीक है। यानी ये नहीं है कि एक दफा किसी इंसान को अल्लाह ताला ने नबुवत के दर्जे पे फाइज कर दिया, ठीक है ना, तो अब उसके बाद जो है ना वो उसको ख्वाब आने बंद हो गए, अब नो मोर ख्वाब, अब जो है ना जो कुछ होगा बस फरिश्ते जिब्राइल अलैहि सलाम आएंगे और वो आकर के उनको या तो उनकी जो आसमानी किताब है उसकी आयात बता देंगे, या जो है जिब्राइल अलैहि सलाम जो है वो उनको अल्लाह की बातें आके बता देंगे, शरीय अहकामात बता देंगे, है ना, यानी एक तरह की जागी हुई हालत के अंदर, ठीक है। तो जब से नबी बने हैं उसके बाद से ख्वाब का सिलसिला बंद हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ख्वाब का सिलसिला नबुवत के बाद भी जारी रहता है, जैसे कि अभी हम सीरत की क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना कि हुदैबिया का वाकया, ठीक है, तो सुलह हुदैबिया का वाकया शुरू कहां से हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि आप सल्लल्लाहु अपने सहाबा कराम के साथ जो है वो उमरा कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकायदा कुछ सहाबा जो है वो हलक करवा रहे हैं और कुछ सहाबा जो है वो कसर करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस ख्वाब के अंदर यानी ये तो वाजे था कि उमरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाजे नहीं था कि एग्जैक्टली कब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि नबी अलैहिस्सलाम निकल तो गए उमरा करने के लिए, लेकिन हुदैबिया के मकाम के ऊपर जाकर के रुकना पड़ गया और आगे नहीं जा सके, फिर अगले साल जाकर के ये ख्वाब पूरा हुआ, ठीक है। तो ख्वाब का सिलसिला नबुवत के दौरान भी जारी है, ठीक है। तो ये तो हो गई इस वाली लाइन के बारे में थोड़ी सी तहकीकी बात, आगे चलते हैं कि आम मुसलमानों के ख्वाब में हर तरह के अहतमाल रहते हैं, इसलिए वो किसी के लिए हुज्जत और दलील नहीं होते, ठीक है ना। नबी का ख्वाब हुज्जत है, ठीक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी लगाने वाला ख्वाब, हालांकि ज़बात तो होते हुए तो नहीं देखा लेकिन छुरी लगाते हुए तो देखा ना, उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखे तो वो हुज्जत हो गए, ठीक है, यानी उसमें ये नहीं है कि नहीं ऐसा कोई शरीय दलील नहीं है इसकी, भाई उमरा करना है तो उमरा करना है, ठीक है ना, अभी कब करना है ये एक अलग बात है, लेकिन करना तो है ना, ठीक है। उसी तरह इस्माइल बेटे को जो है वो कुर्बान करना है, ठीक है ना, अब ये तो ख्वाब के साथ हुज्जत बन गया ना, लाइक दिस इज लाइक डिटर्मिनिस्टिक हुक्म ऑन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। लेकिन आम मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होता, यानी नॉन नबी के साथ ऐसा नहीं होता कि उसका ख्वाब जो है ना वो हुज्जत बन जाए कि बस लाजमी जो है ये बात पूरी करनी है, तो इसलिए वो किसी के लिए हुज्जत और दलील नहीं होते। उनके ख्वाबों में बाज़ औक़ात तबई और नफसानी सूरतों की आमेजश हो जाती है और बाज़ औक़ात गुनाहों की जुल्मत व कदूरत सही ख्वाब पर छा कर उसको नाकाबिले एतमाद बना देती है और बाज़ औक़ात ताबीर सही समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से एक उम्मती का जो ख्वाब है वो शरई हुज्जत किसी सूरत नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि उम्मती को सच्चा ख्वाब आ सकता है, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता कि ये सच्चा ख्वाब है कि ये झूठा ख्वाब है और ये आगे से कब पूरा होगा, ठीक है। तो आप उसकी बेसिस पर कोई लाजमी अमल करें कि अमल करूंगा तो सवाब मिलेगा, नहीं अमल करूंगा तो गुनाह मिलेगा, नहीं। शरई हुज्जत का मतलब ये होता है कि वो एक शरई हुक्म बन जाए, अल्लाह ताला का एक हुक्म बन जाए, ठीक है, जिसको पूरा करने से सवाब मिलेगा और जिसको नहीं पूरा करने से गुनाह मिलेगा, ठीक है ना, ये होता है शरई हुक्म, ये होता है शरई हुज्जत, ठीक है, ये किसी उम्मती का ख्वाब ऐसा नहीं होता। ख्वाब की ये तीन किस्में जो जिक्र की गई हैं यही तफसील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब की तीन किस्में हैं, एक किस्म शैतानी है जिसमें शैतान की तरफ से कुछ सूरतें जहन में आती हैं, दूसरी वो जो आदमी अपनी बेदारी की हालत में देखता रहता है वही सूरतें ख्वाब में सामने आ जाती हैं, और तीसरी किस्म जो सही और हक है वो नबूवत के अज्जा में से 46वां जुज है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है। ठीक है, नबूवत के अज्जा में से 46वां, 46th, 1/46, ठीक है। तो एक जो होल है, ठीक है, उस होल के अगर आप 46 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है ना वो ख्वाब हो गया, और 45 हिस्से जो है वो नबुवत के अज्जा हो गए। ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस की प्रोपोर्शन है कि लाइक ये लाइक कितना कितना परसेंट है ये जी, लाइक 2% इसकी अहमियत है, और 98% जो है ना वो दूसरी चीजों की अहमियत है। ठीक है ना, जैसे हम परसेंट बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से परसेंट का मतलब तो होता है पर 100, आउट ऑफ 100। ठीक है, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने आउट ऑफ 100 करके यहाँ पे नहीं बताया, बल्कि नबी अलैहि सलाम ने आउट ऑफ 46 पार्ट्स, ख्वाब की सिग्निफिकेंस की अहमियत एक हिस्सा है। ठीक है, आउट ऑफ 46। अच्छा, अब जो है इस हदीस की मजीद तशरीह हजरत ने लिखी है कि ख्वाब में जुज़ नबूवत होने के मानी और उसकी तशरीह। ठीक है ना, बजाय तो भाई हमने हदीस पढ़ ली और 46वां हिस्सा पढ़ लिया, बस खत्म बात, आगे चलें भाई, बात समझ में आ गई हमारे, नहीं, बल्कि हदीसों के अंदर जो है ना वो बहुत सारी तफसील भी होती है। इसी वजह से अहादीस मुबारक जो है वो एक बहुत ही यानी डिटेल साइंस है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ना, ये समझना जो है वो एक आम आदमी के बस की बात जो है वो मुश्किल होती है, मानना मुमकिन नहीं होती ऑफ कोर्स, लेकिन मुश्किल होती है। आम जो नेकी की तब की जो है वो जिसमें तालीम दी जा रही हो, वो तो हदीसें आसानी समझ, सच बोलना, झूठ बोलना हराम है वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन जो जिसके अंदर फिकही तफसीलात होती हैं वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, और इवन समथिंग इवन अपेरेंटली एज सिंपल एज दिस कि भाई ख्वाब जो है वो 46वां हिस्सा है। ठीक है ना, हमें लगे कि बहुत ही सिंपल सी बात है, बस हो गई, बात समझ में आ गई, लेकिन देखें उसके अंदर भी कितनी तफसील है। वो फरमाते हैं कि ये किस्म जो हक और सही है और सही अहादीस नबविया में नबूवत का एक जुज करार दी गई है, ख्वाब की ये वाली किस्म, ठीक है, तो उसमें रिवायात हदीस मुख्तलिफ है। ठीक है ना, इवन इस सही हदीस की भी रवायात जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में आई हैं, बाज में 40वां जुज और बाज में 46वां जुज बतलाया है। ठीक है ना, 1/40 भी आया है, और बाज रिवायात में 49 और 50 और 17वां जुज होना भी मनकूल है। ये सब रिवायतें तफसीर कुर्तुबी में जमा करके इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये नकल की गई है कि उनमें कोई तजाद व तखालुफ नहीं है। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुख्तलिफ नंबर्स जो बताए ख्वाब की सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए, तो फरमाते हैं कि ये इसमें जो है ना वो कोई तफावत, कोई तजाद नहीं है इनके अंदर। इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे फरमाया, और तफसीर कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल भी किया। तो इसमें कोई तजाद व तखालुफ नहीं है, बल्कि हर एक रिवायत अपनी जगह सही व दुरुस्त है, और तअद्दुद अज्ज़ा का ये इख्तलाफ ख्वाब देखने वालों के मुख्तलिफ हालात की बिना पर है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर जो मुख्तलिफ तादादें बताई ना, तो वो जिस जिस सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खिताब कर रहे थे, तो उसके अहवाल के हिसाब से बात फरमाई। ठीक है, जो शख्स सच्चाई, अमानत, दयानत और कमाल ईमान के साथ मुत्तसिफ है, यानी उसकी सिफात जो है ना वो सच्चाई, अमानत, दयानत वगैरह है, तो उसका ख्वाब नबूवत का 40वां जुज होगा। ठीक है, और जो इन औसाफ में कुछ कम है उसका 46वां या 50वां जुज होगा, और जो और कम है तो उसका ख्वाब नबूवत का 17वां, यानी 70वां, 70वां नहीं, 70वां, 70th, 17 नहीं बल्कि 70th, यानी उसका जो ख्वाब है ना उसकी वैलिडिटी और उसकी प्योरिटी और ज्यादा कम होती चली जाएगी। जितना उसके अंदर सच्चाई, अमानत और दयानत कम होगी, उसके ख्वाब की अहमियत भी उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जितनी उसके अंदर ज्यादा होगी तो उसकी ख्वाब की अहमियत भी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही फरमान है कि यहाँ ये बात गौर तलब है कि सच्चे ख्वाब के जुज्व नबूवत होने से क्या मुराद है। ठीक है, क्यों जज्व नबुवत क्यों इसको कहा? तो तफसीर मजहरी में इसकी तौजीह यानी वजह यह बयान की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नबुवत का सिलसिला 23 साल जारी रहा, ठीक है, उनमें से पहली ششماही में ये वही इलाही ख्वाबों की सूरत में आती रही, ठीक है, रोया सालेहा नबी अलैहिस्सलाम को 6 महीने तक आते रहे, ठीक है, और बाकी 45 ششماहियों में, ششماहियों का मतलब 6 मंथ्स, ठीक है, हाफ ईयरलीज, तो बाकी ششماहियों में शश का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है और ये 6 के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो बाकी ششماहियों में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की पैगाम रसानी की सूरत में आई। इस हिसाब से सच्ची या सच्चे सच्ची ख्वाबें वही नबूवत का 46वां जुज हुआ, और जिन रवायात में कम व बेश अदद मजकूर हैं, कम या ज्यादा अदद मजकूर हैं, उनमें या तकरीबी का नाम किया गया है या वो सनद के एतबार से साकित हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 46 इस तरीके से बनता है कि 23 साल जो है वही के, यानी जब जो है वो इकरा बिस्म रब्बे के लजी खलक नाजिल हो गई, तो उस वक्त से नबुवत के कितने साल बने? 13 साल जो है वो मक्का मुकरमा के और 10 साल जो है वो मदीना मुनव्वरा के, ये कुल मिलकर के 23 साल बनते हैं, और 23 साल को आप हाफ हाफ में डिवाइड करें तो कितने बनते हैं? 46, ठीक है, तो 46 टुकड़े बन गए नबुवत के, तो इन 46 टुकड़ों के अंदर जो है ना वो एक टुकड़ा जो है वो ख्वाबों के बराबर का नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। अब ये एग्जैक्टली मैथमेटिक्स को अगर आप इसके अंदर लगा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना, तो ये इतना आसान नहीं है इसको समझना, ठीक है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो कोई शरी हुज्जत नहीं है कि आप जो है 46 को कैलकुलेट करने बैठ जाएं कि हाँ भाई ये इसका ख्वाब जो है वो 46वां हिस्सा था, कि इसका ख्वाब जो है वो 40वां हिस्सा था, कि इसका ख्वाब जो है वो 70th हिस्सा था, ठीक है, तो जिस चीज की हमारे लिए शरी हैसियत नहीं होती है, यानी शरी एप्लीकेशन नहीं होती है ना, तो उसके पीछे पढ़ना जो है वो हमारे दीन के अंदर उसकी अहमियत है भी नहीं, ठीक है, तो जो जिसको अल्लाह ताला ने एक मैथमेटिकल जहन दिया है वो बैठ करके कैलकुलेशंस करता रहे बेशक, ठीक है ना, उसकी अब अपनी उसकी शौक है करता रहे, लेकिन हमारे लिए यानी हम जैसे आम बोधे लोगों के लिए जो है ना वो बहुत सारे और भी काम है। तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसके जुज़ नबूवत होने से मुराद ये है कि ख्वाब में बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ें देखता है जो उसकी कुदरत में नहीं है, मसलन ये देखे कि वो आसमान पर उड़ रहा है, या गैब की ऐसी चीज़ें देखे कि जिनका इल्म हासिल करना उसकी कुदरत में नहीं था, तो उसका जरिया बजुज इमदाद व इल्हाम खुदावंदी के और कुछ नहीं हो सकता, जो असल में खासा नबुवत है, इसलिए उसको एक जुज नबुवत करार दिया गया है, ठीक है। ये तो अपने कुदरत से बाहर जो चीजें हैं वो अल्लाह की तरफ से ही इंसान कर सकता है, वो तो अल्लाह ताला ने इंसान की कुदरत में दी ही नहीं है कि वो बगैर जेट इंजन या बगैर प्रोपेलर्स के जो है वो हवा में उड़ सके, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान की कुदरत में दिया है कि वो अपने दो टांगों से जमीन के ऊपर चल सकता है ना, और हाथों की मदद से जो है वो पहाड़ के ऊपर क्लाइम कर सकता है, ये इंसान की कुदरत है, लेकिन हवा में उड़ना इंसान की कुदरत नहीं है। अब वो बगैर किसी टेक्निकल हेल्प के अगर हवा में उड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इमदादो इल्हाम खुदावंदी ही के जरिए से उसने ये चीज करी है, ठीक है, तो यही चीज जो है ना वो खास है नबुवत, क्योंकि नबुवत भी जो है ना वो भी अल्लाह ताला की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के जरिए से इंसान को किसी काम के काबिल बनाती है, इसी को नबुवत कहते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ बात की जा सकती है? किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो या कोई और कोई ऐसी कमेंट हो जो कि हमारे लिए फायदा मंद हो सकता है, तो आप यहाँ पे चैट रूम पे शेयर कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। बस ये तो ख्वाब की हकीकत वगैरह के बारे में बात हो गई, अब एक मुगालते की तरदीद यानी ये गलत फहमी, तो वो गलत फहमी जो है ना वो कादियानी दज्जाल की के एक मुगालते की तरदीद, ठीक है, तो जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिसने कि झूठी नबूवत का दावा किया था ब्रिटिश दौर के इंडिया के अंदर। तो उसने भी ना फिर इस ख्वाब वाले सिलसिले को ही जो है वो अपनी नबूवत के दलील के तौर पे पेश किया। ठीक है, मुझे भी जो है ना वो नबूवत मिल गई है, और देखो नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद हदीस के अंदर बताया है, जिसके ऊपर सारे मुसलमान इस हदीस को सही हदीस समझते हैं कि भाई नबूवत का सिलसिला जो है ना वो ख्वाबों की शक्ल में जारी है। तो जब नबूवत का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो मुझे क्यों तुम कहते हो कि मैं नबी नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हदीस की जो है ना वो अपनी मनमर्जी की जो तशरीह करता है ना, तो वो फिर इस दर्जे की गुमराही के अंदर भी पड़ता है और दूसरों को डालता है। ठीक है कि भाई नबुवत का सिलसिला बंद नहीं हुआ, देखो हदीस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने भी यही किया था कि यहाँ कुछ लोगों को एक अजीब मुगालता लगा है कि इस जुज़ नबुवत के दुनिया में बाकी रहने और जारी रहने से नबुवत का बाकी और जारी रहना समझ बैठे, जो कुरान मजीद की नुसूस कतईया और बेशुमार अहादीस सहीहा के खिलाफ और पूरी उम्मत के इजमाई अकीदा खत्म नबूवत के मनाफी है। ठीक है, और ये ना समझे कि किसी चीज का एक जुज मौजूद होने से उस चीज का मौजूद होना लाजिम नहीं आता। ठीक है, मसलन अगर किसी शख्स का एक नाखून या एक बाल कहीं मौजूद हो तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि यहां वो शख्स मौजूद है। मशीन के बहुत से कुल पुर्जों में से अगर किसी के पास एक पुर्जा या एक स्क्रू मौजूद हो और वो कहने लगे कि मेरे पास तो फलां मशीन मौजूद है, तो दुनिया भर के इंसान उसको या झूठा समझेंगे या बेवकूफ समझेंगे। ठीक है, तो नबूवत का जुज दुनिया के अंदर मौजूद है ख्वाब की शक्ल के अंदर, नबूवत कोई थोड़ी मौजूद है भाई। ठीक है ना, तो इसके लिए हजरत ने अकली दलीलें ये दो दे करके हमें बात समझाई। सच्चे ख्वाब हस्बे तसरीह हदीस बिला शुबा जुज ए नबूवत है मगर नबूवत नहीं। नबूवत तो खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, और ये खत्म हो चुकी है कि भी जो है ना वो दलील दे रहे हैं कि कुरान मजीद की आयत से भी ये बात साबित है, खातमुल नबूवत। ठीक है, खातमुल नबीजीन, सही है, और अहादीस मुबारक भी बेशुमार इसके ऊपर दलील देती हैं। हम सिर्फ अपनी अकल से ये बात नहीं कर रहे, बल्कि ये पक्की बात नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कोई थोड़ी कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ये बतला करके गए हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरह की जो अकली दलीलें हजरत ने दी हैं ना, ये अकली दलीलें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि बस अपने खुशी से अपनी मनमर्जी से जो है वो कोई अकली दलीलें, वो तो अकली दलीलें पर कोई भी दे सकता है भाई। ठीक है ना, अकली दलीलें देने की जरूरत क्यों पेश आई, अकली दलीलें देने की बल्कि की क्या कहते हैं उसको, अकली दलीलें हर जगह, अकली दलीलें जो है ना वो जायज नहीं होती। ठीक है ना, वरना अकल तो हर एक के पास, दिमाग तो है ना, अब दिमाग से कुछ ना कुछ तो अकली दलील कोई ना कोई इंसान, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ तो बना सकता है। ठीक है ना, तो हमारे दीन के अंदर अकली दलीलों की इजादत सिर्फ वहां होती है कि जब वो अकली दलीलें कुरान और हदीस की दलीलों के मवाफिक हों। ठीक है ना, उनके फेवर में हो वो अकली दलील, तब उन अकली दलीलों की का जवाज है, उसकी इजाजत है, वरना अकली दलीलों का जवाज ही नहीं है हमारे दीन के अंदर। ठीक है, तो हजरत ने भी यहाँ पे कुरान और हदीस की बात को साबित करने के लिए ही अकली दलील दी है, वरना अकली दलील तो कोई भी दे सकता है। सच्चे ख्वाब हस्बे तसरीह हदीस बिलाशुबा जुज़ नबूवत है मगर नबूवत नहीं, नबूवत तो खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी है। खत्म नबूवत की दलीलें भी मौजूद हैं तो उनको मुगालता कैसे लगा, सिर्फ इस बात से कि नबूवत बाकी रहना जारी है, सिर्फ इस बात से कि नबूवत बाकी रहना जारी है उनको एक मुगालता इस बात से लगा। देखें मुगालता जो है ना वो ऐसे लगता है, ठीक है, एक उसूल की बात समझ लें, मुगालता कैसे लगता है। मुगालता ऐसे लगता है इन यानी दीन के बारे में गलत फहमी, दीन के बारे में मुगालता कैसे लगता है। ठीक है ना, वो ऐसे लगता है कि एक शख्स जो है ना जो के शैतानी एजेंडा के ऊपर जिंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है ना, कोई एक शख्स होता है शैतानी एजेंडा होता है उसका, यानी वो उसके अंदर शर जो है ना वो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। ठीक है ना, जैसे दज्जाल है, ठीक है ना, वो शैतानी एजेंडे के ऊपर होगा, फिरौन, हामान और इस तरह के बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला बिन उबई, अबू जहल, अबू लहब, ये सारे इंसान थे ना, ठीक है ना, लेकिन ये शैतानी एजेंडा के ऊपर थे, ठीक है ना, नबुवत की मुखालफत, नबियों की मुखालफत, खैर की मुखालफत, ठीक है। उसी तरीके से ना गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत ज्यादा इसके पास इल्म था, ठीक है, लेकिन ये शैतानी एजेंडा के ऊपर। तो ऐसे शख्स जो होते हैं ना फिर शैतान के आलाकार बन जाते हैं, बल्कि आलाकार बने हुए होते हैं। तो ये जो गुलाम मिर्जा कादियानी था ये ब्रिटिश हुकूमत का आलाकार बन गया, ठीक है ना। अब इसने जो है ना वो एक शोशा छोड़ा, शोशा, ठीक है, शोशा क्या छोड़ा कि मैं जो हूं वो मसीह हूं, ईसा अलैहि सलाम, ठीक है, ईसा अलैहि सलाम ने दुनिया में वापस आना ना, तो मैं हूं, मैं वापस आ गया हूँ ईसा अलैहि सलाम की शक्ल में, नाउज बिल्ला, ठीक है। इसने इस तरह के शोशे छोड़े। अब जब ये शोशे छोड़ते हैं तो जो बाकी मुसलमान होते हैं तो उनको तो कहना चाहिए कि भाई ये तुम कहाँ से आ गए भाई, तुम कौन हो, क्या तुम्हारी हैसियत, तुमने जो है वो अपने ईसा अलैहि सलाम मसीह होने का दावा कर दिया है या तुमने नबी होने का दावा कर दिया, हु आर यू, ठीक है ना। लेकिन सारे जो मुसलमान होते हैं वो ऐसा नहीं करते, बल्कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी निकल आते हैं जो कि ऐसे शोशा छोड़ने वाले शैतान के एजेंडे के ऊपर जो इंसान होते हैं ना उनकी बात मान लेते हैं। क्यों बात मान लेते हैं? वो इसलिए बात मान लेते हैं कि उनका अपना ईमान जो होता है ना वो इंतहाई नाकिस होता है, उनका अपना ईमान इंतहाई कमजोर होता है, ठीक है ना। तो वो जो कमजोर ईमान उनका होता है ना, इस वजह से जो है वो जब इस तरह का शोशा छोड़ने वालों के शख्स खड़ा होता है तो वो उसकी बात को उनको समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सी गलत बात कह रहे हैं, इसकी बात के अंदर कौन सी गलत बात है, तो वो उसका उसकी बात को मान लेते हैं और उसका उसका पीछा करना, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही चीज जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ हुई, यही मामला जो है वो मुसैलमा कज़ाब के साथ हुआ। मुसैलमा कज़ाब का भी वाकया सीरत क्लास में अभी इसी सैटरडे को हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जब उसने नबूवत का दावा किया तो पूरा का पूरा कबीला जो कि लाखों इंसानों पर मुश्तमिल था, बनू हनीफा का कबीला है ना, सारे के सारे उसके पीछे लग गए, उसके उसको उसकी बात को मान लिया उन्होंने, ठीक है ना। वो तो एक हजरत सुमामा रजी अल्लाह तआला अन थे उस कबीले के अंदर, उन्होंने जो है ना वो कुरान मजीद के आयात पढ़ा करके अपने लोगों को समझाने की कोशिश करी तो 3,000 लोग जो है वो तौबा ताइब होकर के वापस मुसलमान हो गए, लेकिन बाकी किसी ने बात नहीं मानी उनकी, ठीक है ना। इसी तरीके से आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आकर के शोशे छोड़ते रहते हैं, तो कितने लोग जो है वो उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं, उनके फॉलोइंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग, राइट। क्यों? इसलिए कि उनका अपना ईमान कमजोर होता है, ठीक है। अच्छा, ईमान कमजोर क्यों होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मुगालते लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे शोशा छोड़ने वालों को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं। ईमान कमजोर क्यों होता है? ईमान की कमजोरी की वजूहत जो होती है ना वो दो होती है, ठीक है। एक वजह ये होती है कि जो अहले जो उलमाए हक होते हैं ना, उलमाए हक, उनके साथ जो है ना वो ताल्लुक मजबूत नहीं होता, ठीक है ना। ये जो मजबूती का ताल्लुक ना होना है ना, ये एक बंदे के ईमान की कमजोर होने का सबब बन जाता है, ठीक है। और दूसरी वजह क्या बनती है ईमान की कमजोर होने की, वो आप बता दें अगर। एक तो उलमाए हक के साथ रिश्ते का कमजोर होना, हाँ, दूसरी वजह बनती है ईमान की कमजोर होने की, बिल्कुल सही फरमाया आपने, गुनाह वाली जिंदगी, ठीक है ना, यानी जिस जिंदगी के अंदर अताअत ना हो अल्लाह के हुक्मों की, ठीक है ना, बल्कि गुनाह हो, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी हो, ठीक है ना, ये हुक्मों की नाफरमानी भी ईमान के कमजोर होने का सबब बन जाती है, ठीक है। जब ईमान कमजोर होता है ना तो फिर इस किस्म के शुरूर का और फितन का इंसान मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। जब उसके अंदर ताकत नहीं है तो फिर, यानी रूहानी तौर पर वो कमजोर है, तो फिर जो रूहानी जो जो शर वाली ताकतें होती हैं वो उसके ऊपर गालिब आ जाती हैं, ठीक है ना, उसके जहन पे गालिब आ जाती हैं, उसके दिलो दिमाग के ऊपर गालिब आ जाती हैं, तो उसको फिर मुगालता लग जाता है, और मुगालता लगने से फिर वो ऐसे लोगों का फॉलोअर बन जाता है, ठीक है। तो हमारे हम हमें अपने ईमान की मजबूती के लिए इन दो चीजों की लाजमी जरूरत है। एक तो ये है कि हम इन उलमाए हक के साथ पक्के जुड़ करके रहें, ठीक है ना, और इनके बारे में अच्छा गुमान अपने जहनों के अंदर रखें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें, हर गुनाह को छोड़ने की, ठीक है। और अगर नहीं भी छोड़ पा रहे ना, तो तौबा से जो है वो कभी भी ना पीछे हटे, तौबा करते रहे। बेशक हम कमजोर हैं, नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन तौबा से कभी भी हमने पीछे नहीं हटना, तौबा करते रहे, अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हमारी रहेंगी ना, तो फिर हम रूहानी तौर पर उतने कमजोर नहीं हो सकेंगे कि ऐसा कोई दज्जाल आकर के, कोई फितना परदाज आकर के हमें जो है वो अपने पीछे पीछे लगा ले, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा, बाकी अल्लाह ताला की रहमत जो है वो अल्लाह ताला से मांगते रहे हर सूरत में। अच्छा, आगे आगे फरमाते हैं कि सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिनन नबूवती इल्लल मुबशिराती, यानी आइंदा नबूवत का कोई जुज बजुज मुबशरात के बाकी नहीं रहेगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि मुबशरात से क्या मुराद है, तो फरमाया कि सच्चे ख्वाब, जिससे साबित हुआ कि नबूवत किसी किस्म या किसी सूरत से बाकी नहीं, सिर्फ उसका छोटा सा जुज बाकी है जिसको के मुबशरात या सच्चे ख्वाब कहा जाता है, ठीक है ना। यानी बशारतें, जिनको हम उर्दू जुबान में आमतौर पर बशारतें कहते हैं, ठीक है। यानी आपको कोई कोई फ्यूचर के बारे में कोई बात जो है वो बता दी जाए ख्वाब के अंदर, तो वो आप फ्यूचर जो है वो कोई इंसान अपनी कुदरत से, अपनी मेहनत से तो नहीं फ्यूचर को आप पा सकते हैं ना, तो ख्वाब के अंदर आपको दिखाया जा सकता है इस तरीके से। अच्छा, आगे एक बहुत अहम नुक्ता इसी बहस को मजीद बढ़ाते हुए कि जैसे यानी इस किस्म के बुरे लोग जो है ना, उनको भी ख्वाब आ सकते हैं, तो फरमाते हैं कि कभी काफिर फासिक आदमी का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ये बात भी कुरान हदीस से साबित और तजुर्बात से मालूम है कि सच्चे ख्वाब बाज औकात फासिक फाजिर बल्कि काफिर को भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सूरह यूसुफ ही में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के दो साथियों के ख्वाब और उनका सच्चा होना, ठीक है। यानी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बाकी सबको इंशाल्लाह ये पता ही होगा कि वो जो साहिब या सिजन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो साथी थे जेल के अंदर, उनको सच्चे ख्वाब आए थे ना, वो दोनों तो काफिर थे, ठीक है। इसी तरह बादशाह मिस्र का ख्वाब और उसका सच्चा होना कुरान मजीद में मजकूर है सूरह यूसुफ के अंदर आगे, ठीक है। वो भी तो काफिर ही था, बादशाह मिस्र जो था, हालांकि ये तीनों मुसलमान नहीं थे। हदीस में किसरा का ख्वाब मजकूर है, ठीक है। किसरा जो है क्या कहते हैं, ईरान का जो बादशाह, उसको किसरा कहा जाता था ना, कैसर जो है वो रोम के बादशाह को, और किसरा जो है वो ईरान के बादशाह को, तो हदीस में उसका ख्वाब भी मजकूर है जो उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मुताल्लिक देखा था, कि यानी एक नबी जो है वो आने वाले हैं। तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद क्या था, सीरत के अंदर शुरू में बिल्कुल पढ़ा भी था कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त उसने ख्वाब देखा था कि उसके महल के जो है वो कंगरे गिर गए हैं और ये हो गया वो, तो कुछ किस्म की चीजें उसने देखी थी, तो वो भी सच्चा ख्वाब था। हालांकि ये तो बहुत बड़ा काफिरों का सरदार था, तो वही फरमा रहे हैं कि वो ख्वाब भी सही हुआ, हालांकि किसरा जो है वो मुसलमान नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी आतिका ने हालत कुफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच्चा ख्वाब देखा था, ठीक है। आतिका का ख्वाब, जिनके बारे में यानी उस वक्त वो मुसलमान नहीं थी, बाद में मुसलमान हो गई कि नहीं हो गई, इसमें जो है वो इल्मी इख्तिलाफ है, ठीक है। तो उन्होंने जी बिल्कुल माशाल्लाह, सीरत की क्लास लेने वाले जो है मौजूद हैं, तो बदर के मौके के ऊपर उसने जो है ना वो ये ख्वाब देखा था आतिका ने, कि ऐसे जो है वो एक आदमी आ रहा है और जो है वो यानी पहाड़ के ऊपर से जो है वो पत्थर जो है लुढ़कता हुआ आ रहा है, और पत्थर के टुकड़े होते हैं और वो हर घर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी बदर की शिकस्त जो है ना, वो ख्वाब के अंदर आतका को बतला दी गई थी, पर आतका ने जो है वो अपने भाई हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को बता दी थी, फिर अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से वो बात जो है वो सबको पता चल गई थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो भी ख्वाब के जरिए से, वो सच्चा ख्वाब था, बदर के अंदर वाकई कुरैश मक्का को कैसी बुरी शिकस्त हुई थी। नीज काफिर बादशाह बुख्त नसर के जिस ख्वाब की ताबीर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दी, वो ख्वाब भी सच्चा था, ठीक है ना। ये भी मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है, और तहकीक करने का इरादा था, लेकिन वही बस हमेशा की तरह रह गया। بخت نصر نے کیا خواب دیکھا تھا اور برطانیہ علیہ السلام نے کیا تعبیر دی تھی. اس سے معلوم ہوا بخت نصر وہ بادشاہ تھا جس نے بیت المقدس کے اوپر حملے کیے تھے اور وہ ان کو صحیح مزہ چکھایا تھا. وہ یہی بات اگزیکٹلی جو ہے وہ خواتین کی کلاس کے اندر آج چل رہی تھی, سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے اندر بخت نصر وغیرہ کے بارے میں. اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے, اس کے صالح نیک بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی. ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں, عموماً سچے ہوتے ہیں. فساق و فجار کے عموماً حدیث و نفس یا تصویر شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں, مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے اکابرین نے, ظاہر ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہ معرف القرآن جو ہے وہ آج سے کوئی پتہ نہیں 50 سے زیادہ سال پہلے لکھی تھی نا. ٹھیک ہے, اور یہ بات حضرت نے اپنی طرف سے بھی نہیں لکھی بلکہ ہمارے اکابرین نے اس سے بھی پہلے کئی کئی سو سو سال پہلے جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, جب ہمارے پاس یہ سارا علم موجود ہے تو اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے, ہمارے لیے تو بہت آسان ہے نا یہ سمپسنز کارٹون کا فینومینا سمجھنا. رائٹ, سمپسنز کارٹون کا تو پتا ہوگا نا, اب تک ہم نے کلاسوں میں بھی کئی دفعہ اس کی بات کری ہوئی ہے کہ سمپسنز کارٹون کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ معاملات دکھا دیے, بہت ساری چیزیں جو کہ 15 15 20 20 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ہوئی, وہ سمپسنز کارٹون کے اندر 15 15 20 20 سال جو ہے وہ پہلے دکھا دی ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ایلیویٹر سے نیچے اترنا اور ایک بندے کا جو ہے وہ فلیک کارڈ ہاتھ سے گر جانا, رائٹ, ایگزیکٹلی یہی جو ہے وہ اصل دنیا کے اندر ہوا. ٹھیک ہے, اور سمپسنز واحد کارٹون نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کارٹون اور بھی ہالی ووڈ کی فلمیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹ چیزیں جو ہمیں پہلے سے بتائی ہوئی. ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ کا کرونا ہے COVID-19, تو اس کے اوپر تو پوری پوری انہوں نے فلم بنا کر کے 2013 کے اندر ریلیز کری ہوئی تھی, جس کے اندر کعبۃ اللہ کا بند ہونا بھی جو ہے وہ دکھایا گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی یہ پورا یعنی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہی ہے کہ جو ہمارے اکابرین سے دور رہیں گے, جو ہے وہ ہمارے اکابرین کے اور ہمارے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے علم سے دور رہیں گے, ان کو تو یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی. جب ان کو پتا نہیں ہوں گی تو جب وہ سمپسنز کارٹون دیکھیں گے یا ان کی کوئی اور اس قسم کی پریڈکشن اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو وہ مرعوب ہو جائیں گے, ہے نا, اور وہ جو ہے وہ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے, ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ دین کی جو ہے وہ نفی کی کسی شکل کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو بھائی کون سی ایسی بڑی بات ہے, ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خواب اگر دکھلا دیے جس کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹلی دنیا کے اندر فلانی چیز ہوتی ہے اور ایسے ہونی ہے ایسے ہونی ہے, اور پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ یعنی یہ جو یعنی آپ امیجن کریں نا کہ دنیا کے اندر شیطانیت اور یعنی جو کفر ہے اور جو گناہ ہے یہ ہالی ووڈ سے زیادہ کہیں پہ ہو سکتا ہے, رائٹ, ہالی ووڈ سے زیادہ, رائٹ, کہیں پہ نہیں ہو سکتا نا. تو یعنی پوری یعنی ہالی ووڈ کے اندر تو صرف گناہ کرتا نہیں ہے بندہ, بلکہ گناہ کی دنیا کے کونے کونے میں ترویج اور اشاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس بندے کا گناہ جو ہے وہ اس لیول پہ تو کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے نا, سوائے اس کے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کے بھی بڑے ہیں, تو ان کے علاوہ تو اور دوسرا اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا نا. تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح کے خواب دکھائے ہیں تو پھر انہوں نے اس کے آگے سے جا کر کے ہالی ووڈ کی فلم تو بنانی ہے نا یا کوئی کارٹون تو بنانا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. بہرحال تو آگے بھی ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس, تو لکھتے ہیں کہ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے, نہ خود اس کے لیے کسی معاملے میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لیے. بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے, کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے. یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے, یعنی شرعی احکام کا درجہ دینا یا وہ بندہ جس نے خواب دیکھ لیا اس کو جو ہے وہ اللہ کا ولی سمجھنا, بھائی اللہ کی ولایت کا جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ہی معیار ہے, تقویٰ. ٹھیک ہے نا, دین کا علم, تقویٰ
और वो तकवा भी ऐसा कि जिसके ऊपर उलमाए हक जो है ना वो मुत्तफिक हो कि हाँ ये बंदा मुत्तफिक है, ये बंदा जो है वो मुत्तकी है, वरना तकवा तो मतलब हर बंदा ही मुत्तकी अपने आप को समझता है, ठीक है ना। तो अपना समझने वाला तकवा नहीं, बल्कि जिसको के उलमा और नेक लोग जो है मुत्तकी समझते हो, ठीक है। तो बस ये है विलायत की दलील, और कोई नहीं विलायत की दलील, ख्वाब शाब कोई नहीं होते, ठीक है। तो एक बात, हमारे साथी हैं क्लास में, तो आई एम श्योर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज है ना कि ये इधर भी ज्यारतें हो रही हैं उधर भी ज्यारतें हो रही हैं, क्या मतलब जो जो बिदती हैं उनको भी ज्यारतें होती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना, और जो बिदत के खिलाफ हैं और जो के तौहीद के ऊपर सुन्नत के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले हैं उनको भी ज्यारतें हो रही होती हैं। तो अब वो कंफ्यूज इस बात के ऊपर है, तो भाई ज्यारतें तो उधर भी हो रही हैं, ज्यारतें तो इधर भी हो रही हैं, तो कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, ठीक है ना। क्या मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ विलायत क्या है, ज्यारतें, है ना, ज्यारतें उनका स्टैंडर्ड ऑफ विलायत है, किसको ज्यारतें हो रही है किसको ज्यारतें नहीं हो रही है ना, जिसको ज्यारतें हो रही हैं वो वली है, जिसको नहीं हो रही है वो वली नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों, इसलिए कि विलायत की तारीफ ही नहीं पता, राइट, विलायत का स्टैंडर्ड ही नहीं पता। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर विलायत का स्टैंडर्ड बताया हुआ, लेकिन हम कुरान मजीद से जो है वो स्टैंडर्ड लेने के बजाय अपने जो है वो खानदानी स्टैंडर्ड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, राइट। इन औलिया अल्लाहु इल्लल मुत्तकून, ठीक है, नहीं है कोई अल्लाह का वली सिवाय तकवा वाला, ठीक है, ज्यारतों वाला नहीं होता अल्लाह का वली। और दूसरी बात यह है कि ज्यारतें अगर हो रही हैं, आपको क्या पता आप ख्वाब में उनके साथ शामिल थे कि जब उनको ज्यारतें हुई थी, आपको क्या पता कि वो ज्यारत हुई भी थी कि उन्होंने जो है वो गढ़ी हुई है ये ज्यारत, ठीक है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि कोई उनकी अपने कोई उनको अपनी विलायत की अलामत समझने लगता है, कोई उनसे हासिल होने वाली बातों को शरीय अहकाम का दर्जा देने लगता है, ये सब चीजें बेबुनियाद हैं, खुसूसन जबकि ये भी मालूम हो चुका है कि सच्ची ख्वाबों में भी बकसरत नफसानी या शैतानी या दोनों किस्म के तसव्वुरात की आमेजश का एहतमाल है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस मौके पर एक बात जहन में आई है, पहले भी कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इवन नबी अलैहिस्सलाम को अगर किसी ने ख्वाब में देख लिया है ना, तो ये भी उसकी विलायत की दलील नहीं है, ये भी उसकी विलायत की दलील नहीं है जिसको नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज्यारत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत जो है वो किसी काफिर मुर्तद और किसी बदअकीदा इंसान को भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ज्यारत की भी तफसील होती है कि भाई ज्यारत पहली बात तो हुई भी है कि नहीं हुई, ये भी बंदा सच बोल रहा है आपको, आपको क्या पता कि वो सच बोल रहा है कि उसको ज्यारत हुई है, इतना तो झूठ आम है, हम तो जरूरतन तो नहीं, हम तो आदतन झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई ख्वाब, झूठा ख्वाब अपनी तरफ जो है वो मंसूब कर देना, ये तो आम है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि बंदे ने देखा भी है कि नहीं देखा है, दूसरी बात यह है कि जिसने देखा है तो उसने नबी अलैहिस्सलाम को अच्छे अंदाज में देखा है कि बुरे अंदाज में देखा है, ठीक है ना। ये आपको क्या पता कि वो क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये रहने दें इन सब बातों, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई ज्यारतें वगैरह हो भी रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ शेख को जाकर के बताएं जो कि आपके अंदर बाहर से वाकिफ है और जिसका काम है आपकी इसलाह करना, जिसका काम है कि वो आपको जो है ना वो आपके नफ्स को फुलाने से जो है ना वो रोके, ठीक है ना। वरना किसी दूसरे को बताएंगे ना तो आपका, हाँ अल्लाह के वली हो क्या बात है आपकी, बस वो तो आपका मुरीद हो जाएगा, मुतकिद हो जाएगा, और फिर जो है ना वो आप माशाल्लाह हवाओं में पहले ही उड़ रहे थे, मजीद जो है वो 10 फीट ऊंचा उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शेख तो फिर हवा में उड़ने से ही तो उसने रोकना होता है, ठीक है, कि बंदा हवा में उड़ना ना शुरू हो जाए, उसी को उसका तो काम ही ये होता है, ठीक है ना। तो उसको जाकर के ज्यारतों का भी बताएंगे ना तो भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाकी किसी को बताने में कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और फिर उसके बाद बाकी की तफसील आते हैं कि एक बंदे को जो है वो, मैं हमारे हजरत ने बताया कि भाई वो शिया था, ठीक है ना, शिया को नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत हो रही है, ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उससे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के जो वजरा थे उनका दुश्मन, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह का, वो नबी अलैहिस्सलाम की महबूबा हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दुश्मन, ठीक है ना। तो ख्वाब में आकर के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कोई तमगा पहनाना है इसके बाद, ठीक है ना। तो ख्वाब में आ जाना जो है ना सिर्फ ये किसी की भी विराज दलील होती है, आपको तफसीलात नहीं पता, इन बातों को रहने दें, अमल को देखें कि अमल जो है ना वो क्या है, सोच क्या है, अमल से भी पहले जो है वो आज मुसीबत पड़ी हुई है, अमल तो दूर की बात, हमारी तो सोचें ही इतनी गंदी हुई हुई है, हम तो सोच में ही जो है वो अल्लाह के हुक्मों को जो है वो आखिरी दर्जा भी नहीं देते, ठीक है, तो फिर कौन सी ज़ियारतें, कौन सी विलायतें, ठीक है। चलें फिर यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, ताला से बात की समझ और अमल की तौफीक की दुआ के साथ, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।